हरे कृष्ण। तो विगत लगभग दो हफ्ता से हम लोग प्रह्लाद महाराज के द्वारा उपदिष्ट नवधा भक्ति के नौ अंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। प्रथम अंग श्रवण के ऊपर हम चर्चा किए थे, तो अंतिम अंग आत्मनिवेदन के ऊपर भी हमको चर्चा करना पड़ रहा है। आज महीना का आखिरी दिन भी है। तो आत्मनिवेदन श्लोक का कई बार दोहरा आवृत्ति कर चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर नहीं जाते हैं। प्रभुपाद जी ने आत्मनिवेदन के ऊपर ये तात्पर्य लिखे हैं। आत्मनिवेदनम, जब किसी में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं रहती तो वह अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देता है और हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। यह अवस्था आत्मनिवेदनम है। ऐसा भक्त उस गाय के तुल्य है जिसकी रखवाली उसको स्वामी करता है। आपने स्वामी की देख रेख में गाय को आपने उदर पूर्ति की कोई चिंता नहीं रह जाती। ऐसी गाय अपने स्वामी के प्रति सदैव समर्पित रहती है और कभी भी मनमाना कार्य नहीं करती, केवल स्वामी के लाभ के लिए ही हर कार्य करती है। इसलिए कुछ भक्त भगवान को शरीर अर्पण करने को आत्मनिवेदनम मानते हैं। और जैसा कि भक्ति विवेक ग्रंथ में बतलाया गया है, कभी कभी भगवान को आत्मा का समर्पण आत्मनिवेदनम भी कहा जाता है। आत्मनिवेदन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बलि महाराज तथा अम्बरीश महाराज का भी है। द्वारका में रुक्मिणी देवी भी उनके आचरण में कभी कभी आत्मनिवेदन दिखाते हैं। ओम अज्ञानंतिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे आप सुन चुके हैं, ये नवधा भक्ति जो है, प्रत्येक भक्त प्रत्येक विष्णुजन वैष्णवों के मेरुदंड है, उनके प्राण सदृश है, जीवन के भक्ति के जीवन है। हरेक अंग बहुत महत्वपूर्ण है। कोई साधक अगर कोई एक भी अंग को ठीक ठीक से पालन करे तो सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। तो ये जो नव अंग भक्ति को प्रह्लाद जी ने बोले हैं, जिनमें कई बार ये कहा गया है महत्वपूर्ण दो शब्द की, इति पुंसार पिता विष्णु, विष्णु को अर्पित हो करके अर्पित करके करना चाहिए। फिर दूसरा और महत्वपूर्ण कहा गया, क्रियते भगवती अद्धा, केवल उनके ही लिए ही करना चाहिए। कभी मन में संशय आ सकता है, वह जो अर्पण कर दिया फिर उसको क्यों महत्व मानते हैं, दे दिया। इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग सब एक्सपर्ट है, भगवान बहुत प्रहलाद भी चतुर थे, क्योंकि हम किसी को कोई देते हैं, देने के पीछे कुछ हमारा उद्देश्य रहता है, इसीलिए देता हूं कुछ काम बनाने के लिए। तो भगवान को कोई कुछ अर्पण करता है, उनको सिर्फ अपना अभिसंधि रहता है, इसलिए बोलते हैं कि अर्पण तो कर दिया लेकिन कंप्लीट उन्हीं के लिए कर रहा है ना, और कोई आशा है उसका, इसलिए फिर अद्धा कहना पड़ा उनको। तो ये जो अर्पण, अर्पिता और अद्धा, ये दोनों शब्द इस आत्मनिवेदन से ही घटता है, बाकी किसी के साथ घटता नहीं, क्योंकि बाकी तो सब श्रवणम कीर्तनम एक एक अंग करते हैं, लेकिन ये जो पूर्ण समर्पण, देह समर्पण, इसी में ये अर्पित और केवल उन्हीं के लिए, ये बात इसी में ही घटता है आत्मनिवेदन। तो ये न अंग इस प्रकार है, पहले प्रह्लाद जी कहे कि श्रवणम, क्यों श्रवण के बिना बाकी कुछ जान नहीं सकते, सबसे पहले अंग श्रवण है। श्रवण का अर्थ है भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि कर्ण स्पर्श श्रोत्र स्पर्श, कर्ण के द्वारा इस लीला के संबंध रखना सुनना श्रवणम, और वही वस्तु नाम रूप गुण लीला आदि को जिह्वा स्पर्श ये कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम तत् अनुसंधानम, अगर इसी विषय को अनुसंधान करते हैं ये स्मरणम है। पाद सेवनम परिचर्यात्मकम, प्रभु के हर प्रकार से परिचर्या चारों तरफ से करते हैं ये पाद सेवनम। अर्चनम विविध सामग्री के द्वारा उनका विधिवत सम्मान और पूजा करना ये अर्चनम। वंदनम, वंदनम में तीन उपविभाग है, सबसे पहले अभिवादनम नमस्कारम और गुणानुवादम, अभिवादन करना है, नमस्कार करना है, फिर उनके स्तुति गुणानुवाद करना है, स्तुति करना है। उसके बाद दास्यम आज्ञापालनम, दास्य मुख्य है, उनके आज्ञा पालन करना प्रभु के प्रिय के। उसके बाद सख्यम, सख्यम दास्यम एक ही है, उसमें भी आदेश पालन, लेकिन उसमें परम विश्वास और आत्मीयता साथ, आत्मीयता और विश्वास के साथ जो आज्ञा पालन, यह सखा सख्यम। और अंततः ये आत्मनिवेदनम, जिसमें देह समेत जो भी और कुछ है सब कुछ समर्पण कर देना, देह समेत जो भी कुछ है, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर, मारवी राखवी जो इच्छा तुहार नित्य दास प्रति तुया अधिकार। अब आप मुझे रखना है, मारना है, डू एवर व्हाट एवर यू वांट, मेरे प्राणनाथ आप ही हो, आपका अधिकार है, यू हैव ऑल राइट रिजर्व टू डू एनीथिंग विथ मी। प्रभुपाद जी कहते नाचाओ नाचाओ आमे जय इच्छा तुम्हार, जैसे मुझे नचाना चाहते नचाओ, आई एम रेडी टू डांस इन योर हैंड लाइक ए पपेट। इस प्रकार तो ये आत्मनिवेदनम को उदाहरण जैसे प्रभुपाद जी ने दिए, सर गोस्वामी ने दिए हैं, पशुवत बेचा हुआ पशु, किसी के पास कोई पशु था, उसको किसी को बेच दिया, तो जो बेच दिया विक्रेता उनका ऊपर राइट कुछ नहीं रहेगा, फिर उसके ऊपर जो खरीदा वो उसको खिलाए पिलाए बांध के रखे काम में लगाए व्हाट एवर, अभी उनका मर्जी किसी नहीं रहेगा ऐसे ही। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते थे, उन्होंने कहे शरणागत अकिंचनेर एकई लक्षण तारा मध्य प्रवेशिल आत्मसमर्पण, बोले एक शरणागत होते हैं और अकिंचन होते, दोनों के लक्षण एक ही होता है, क्योंकि उनके अंदर तारा मध्य प्रवेश ही आत्मसमर्पण, उनके अंदर में आत्मसमर्पण प्रवेशन आत्मसमर्पण क्रिया उनके दोनों में होता है, इसलिए लक्षण एक ही है, आत्मसमर्पण के लक्षण तो एक ही होता है और वो दोनों में देखा जाता है। लेकिन दोनों में जैसा था लेकिन दो नाम क्यों लिए, एक ही नाम लेते नहीं, नाम दो लेते हैं, एक क्या क्या, एक शरणागत दूसरा अकिंचन, ये दोनों में कुछ अंतर है, यद्यपि लक्षण एक दिखाई पड़ता है शरणागत के हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है क्या, ये शरणागत होने का जो हेतु है इसमें अंतर है। जो शरणागत कहला जाते हैं जो भक्त, उन लोगों को, उन लोगों ने संसार भोग करने का इच्छा था, संसार भोग करने के लिए चाहते थे, प्रयास भी किए थे, खूब प्रयास किए, लेकिन प्रयत्न करने के बाद विफल हुए, व्यर्थ काम हुए, असफल हुए। असफल होकर कि संसार भय से डर के मारे वहां से छोड़कर भागे। बोले बाप रे बाप, ये होगा नहीं, मेरा कुछ होता नहीं, मेरे सिंग टूट गया, दांत निकल गया, ये बड़ा खतरनाक है। यहीं से डर के भागे, विफल काम हो करके आ करके और कोई उपाय न देख करके निराश्रय मांग जगदीश रखे भगवान की शरणागत हुए, तो उनको शरणागत कहला जा सकता है। उनको क्या कहला जा सकता है? शरणागत। तो उन शरणागत भक्तों का, शरणागत होने का हेतु क्या होगा? कि संसार भोग में विफलता, वो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, असफलता, और इससे डर के मारे भाग करके यहां शरणागत। लेकिन जो अकिंचन भक्त होते हैं, उनको शुरू से ही संसार भोगने की इच्छा नहीं था, उन्होंने अपने स्वरूप संबंध अनुसार कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा को ही अपने धर्म माने, सहज क्रिया माने, और इसमें ये संसार विषय सुख प्रतिकूल है, ये रोड़ा डालता है, इसलिए उसको छोड़ना चाहते हैं। बोले ना, ये गड़बड़ करता है, इसकी वजह से मैं कर नहीं पाता हूँ ठाकुर जी की सेवा, इसलिए निष्पृह होकर के उसको छोड़े। शुरू से उनका इच्छा संसार भोग में नहीं था, कृष्ण सेवा का इच्छा था, तो उन्होंने आकर कृष्ण को समर्पण किया, तो समर्पण किए, शरणागत हुए। तो वो जो शरणागत किए, शरणांग शरणागति दोनों तो करते हैं, लेकिन दोनों के शरणागति के हेतु के अगर देखें तो देखा जाता है जो अकिंचन भक्त है उनके शरणागत होने का हेतु है कृष्ण की सेवा, और जो शरणागत भक्त है उनका शरणागत होने का हेतु है संसार भोग की असफलता, भय। तो इसलिए दोनों में अंतर है, लेकिन अभी कार्य एक ही कर रहे हैं, भगवान के शरणागत होते हैं। जब शरणागत होते हैं तो शरणागति के जो षड़ लक्षण है, षडांग शरणागति, आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, कृष्ण रखे तीति विश्वासो, और गोत्रुप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षडविधा शरणागति। जो भगवान की सेवा के लिए फेवरेबल है, अनुकूल है, उसको स्वीकार करना, जो अनुकूल नहीं प्रतिकूल है उसको त्याग देना, और कृष्ण ही मेरा एकमात्र रक्षण करेंगे, करते ही हैं, करेंगे, ये प्रगाढ़ विश्वास पालन करना। गोतृप्त कृष्ण ही अकेले मेरे रक्षा करता, पालन करता, पोषण करता, एवरीथिंग, इस भाव में उनको वर्ण करना, ये गोतृप्त वर्णन तथा आत्मनिक्षेप होता है, आत्मनिवेदन, पुनः शरणागत हो जाना, और कार्पण्यता, हे कृष्ण मैं महाअभिमानी, अहंकारी, अपराधी, घमंडी, तेरे भक्ति करने में ये सब वध होता है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी, कृपा करो, बचाओ मुझे, कैसे भी कैसे भक्ति में लगाओ, इस प्रकार गिड़गिड़ा हट कर रो कर जो प्रार्थना, दैन्य बोध दिखाना, इसे कहते हैं दैन्य, आत्मनिखो कार्पण्यता। ये तो इस प्रकार शरणागति के ये क्रिया है, इसमें एक है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण में मुख्यतः कायिक समर्पण, देह समर्पण, क्योंकि बाकी जो श्रवण कीर्तनम अंदनम वंदनम अर्चनम, इसमें सब बाकी शब्द हो गया, लेकिन शरीर को भी अपना मान के रखे थे, इस शरीर को ही सो मुठ उनको दे देना, और दे देना मतलब ऐसे दे देना कि उन्हीं के हाथ में छोड़ देना, हमारा कुछ भी नहीं रह जाना, आमार बोलिते प्रभु आरा कि छुना, मेरा कहने का लायक में मेरा कुछ और है नहीं, इसी को तो अकिंचन कहते हैं। अकिंचन का अर्थ है किंचित मात्र भी मेरा है ये कुछ नहीं, अरे तेरा घर बढ़ी है सो मेरा नहीं है, ठाकुर जी का है, पुत्र पत्नी द्वारा संतान संपत्ति ये सब मेरा कुछ नहीं, सब ठाकुर जी का, उन्हीं के दास दास है, ये भजन माम वही समझे। जो कुछ भी हमारा है उसमें अपना सत्व को निकाल फेंको, सारे सत्व को भगवान में दे दो, इस प्रकार के समर्पण। अपने गोस्वामी लोग ने आत्मसमर्पण को अर्थ किए हैं तीन भाग में, बोले आत्मसमर्पण क्रिया में तीन क्रिया है, क्या? सबसे प्रथम क्रिया है जो आत्मसमर्पण कर देते हैं उनका प्रथम क्रिया है निज इंद्रिय सिद्धि निमित्तार्थ चेष्टा के अभाव। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने इंद्रिय तृप्ति आपने सिद्धि के लिए किसी प्रकार के कार्य या चेष्टा का इच्छा के अभाव करना ही नहीं है, कोई चेष्टा के अभाव इच्छा के अभाव आपने प्रीति के लिए आपने इंद्रिय तृप्ति आपने सिद्धि के लिए कोई प्रयास ही नहीं करेंगे, प्रथम लक्षण। दूसरे लक्षण है आप स्वीय साधन और साध्य, अपना साधन और साध्य, साधन साध्य समझते ना, साधन मतलब उपाय और साध्य मतलब जो लक्ष्य है, अपना पूरे जीवन अवधि में जो उपाय है जो साधन है और जो साध्य है जो लक्ष्य है वो दोनों को प्रभु में अर्पण कर देना, उभय भगवत अर्पित दोनों उनके ही है, क्योंकि मेरे जी संपूर्ण जीवन का हर प्रकार के साधन भी वही उनके लिए है और लक्ष्य भी वही उनके खुशी है बस। और तीसरे प्रकार के है कि केवल तत् प्रत्यार्थे तद अर्थे उन्हीं के लिए प्रिय के प्रसन्नता के लिए जावतीय सकल चेष्टा की तत्परता, हमारा इंद्रियों की मन की बुद्धि की जो भी कुछ क्रियाएं हम करेंगे केवल ही केवल उनके खुशी के लिए और किसी हमारा चेष्टा ही नहीं। जो भी कुछ हमारा शारीरिक अंग प्रत्यंग मन बुद्धि इंद्रिया जो कुछ हम करना चाहेंगे तत्प्रत्यार्थ है उन्हीं के लिए और कोई उद्देश्य है ही नहीं। ये तीन प्रकार के हेतु जब करके कोई काम करता है तो उसको बोलते हैं समर्पित, ये शरणागत। और भक्त विनोद ठाकुर तो यहां तक दावा कर कहते हैं षडंग शरणागति हईबे जहार, षडंग शरणागति हईबे जहार, ताहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार, ताहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार। नंद कुमार भगवान कृष्ण केवल उन्हीं के बात को सुनेंगे, उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सब रिजेक्ट डस्टबिन में जाएगा, स्वीकार ही नहीं करेंगे। किनका? जिनका ये शरणागति हुआ हो, शरणागत भक्तों की बात सुन, नहीं तो बाकी सुनते ही नहीं। तो इस प्रकार बेचे हुए पशु के समान शरणागत हो जाना, समर्पित हो जाना, सब कुछ कायिक वाचिक मानसिक उन्हीं को दे देना, जो कुछ हमारा है सब कुछ देह समर्पित कर देना। तो इसमें उदाहरण दिया गया बलि महाराज का, आत्मनिवेदन के आचार्य महाराज बलि है। महाराज बलि के प्रसंग हम श्रीमद् भागवत महापुराण में अष्टम स्कंद में पढ़ते हैं, अंतिम अंतिम भाग में लगभग 15 से लेकर के 23-24 तक ये नव अध्याय में बलि महाराज का चरित्र व्याख्या किया गया है। विशेष करके जहां बलि महाराज आत्मसमर्पण किए, बलि महाराज कोई ऐसे देखे तो भगवान देवताओं के, सब देवताओं के विरोधी थे, असुर थे, असुर के गुण था पक्का, खूब लड़ाई झगड़ा करते, पहले तो देवासुर संग्राम में लड़ाई झगड़ा करके भगवान के सामने लड़े थे और चक्र से मारे गए थे, एक बार मर्डर हो गया था उनका, शुक्राचार्य ने कृपा करके उनको जीवनदान दोबारा जीवन दिए, जी करके आए, फिर गुरु सेवा किए, गुरु सेवा करके फिर चढ़ाव करके फिर देवताओं को जीत गए, इंद्र को भगा दिए, जो भी करे। तो इंद्र ने माँ के पास गया, उन्होंने माता आदित्य ने पवित्रत की, जो भी की, तो भगवान उनको वरदान दिए, बोले क्या करूं, ये बलि ही ब्राह्मण सेवा कर रहा है, और रही बात दुष्ण रही मेरा भक्त का पोता है, प्रहलाद के पोता, और प्रहलाद के प्रति इतने उनके संबंध है बलि महाराज का, प्रहलाद के बेटा का जितने संबंध है उनके पोता का इतने संबंध है, बहुत वेरी इंटीमेट रिलेशन बलि का प्रहलाद के साथ। और भगवान ने प्रहलाद को वचन दिए थे कि तेरे कई पीढ़ी तक तुम्हें गड़बड़ नहीं करूंगा, एक्शन नहीं लूंगा, और कैसे मैं करूंगा उसके सामने। तो लेकिन यहां वचन दिए माता आदित्य के, बोले तुम मेरा इतने बड़े व्रत किया, द्वादश दिन सब अच्छा से किया, तेरा भी मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए, मैं अभ्यर्थ हूं, मेरा पूजा करके कोई व्यर्थ नहीं होता किसका प्रयास। तो तो काम तो तेरा बनाऊंगा लेकिन करूंगा मेरे हिसाब से करूंगा। वो सोचते थे कि झगड़ा करके मार छीन कर ले आएंगे संपत्ति, हमारा संपत्ति हड़प लिया उनको ले आएंगे। भगवान इस प्रकार नहीं किए। भगवान मेरे भक्त है, ब्राह्मण से भी है। भगवान ने दूसरी पोज उठाए, भीख मांग कर ला कर देंगे। भीख मांगने के लिए जो मांगने वाला होता है वो छोटा होता है, दाता बड़ा होता है हमेशा। दाता का हाथ ऊपर और लेने वाले का हाथ नीचे रहता है, तो इसलिए भगवान अपने साइज को छोटा किए, बोना बने। लेकिन बामन बने मांगने गए लेकिन टोटली प्रोजेक्ट चीटिंग का था, चीटिंग करते, चीटिंग किए ही। ये संसार में छलना शब्द तो ठाकुर जी से हम आया, उनसे सीखे। कविवर जयदेव गोस्वामी उनके वंदना करते हैं वामन देव जी के, श्री वामन देव जी को, छल यसी विक्रमणे बड़ी मद्भुत वामनम। छल यसी शब्द सबसे पहले लगा, बोले आप छलना नायक है, छलनायक, छल यसी विक्रमणे, अपनी अद्भुत वामन। मन क्या ये साइज कुछ दिखाया सैंपल और काम में कुछ और, सैंपल दिखाकर पास कर लिया हम यही माल देंगे, सप्लाई में कुछ हो रहा है। सैंपल जब वामन देव देखा है, अपना पैर में लूंगा तेरा पैर में नहीं। बड़ी महाराज बोलते, अरे भैया छोटा ब्राह्मण, तेरा पग छोटा है, 9 इंच का चप्पल है, मेरा 9000 फुट का चप्पल लगता है, तो मेरे पैर में नाप लो, कई फ्लैट बन जाएगा, एक दो गांव मिल जाएगा तुझे। नहीं 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 नहीं, मेरा पैर, मेरे पग में लूंगा, मेरे जो छोटी छोटी पग में लूंगा। अब संतोषी है, कितने धर्म के बाद छल करके, छलना करके बड़े धर्म उपदेश किए, इतने सिखाए हम, संतोषी है, संतोषी, इतने संतोषी है। जब नापने का बात आए, ये स्केल चेंज हो गया, जो स्केल को सैंपल दिखा था सबका सामने, वो स्केल चेंज। इसको बोलते विक्रमणे बलि अद्भुत वामनम, पद नख निरजनी तजन पावनम। और ऐसे पैर के नाखून में छेद करके जो पानी के निकाले थे, पद नख निर जनित त्रिलोक पावनी गंगा, वही वामन देव के नाखून के चोट से पानी निकला, उनके पैर को धो करके, तदस नखस्पर्श जल, ये गंगा जी है, ये इस उनकी स्तुति है वामन देव की। तो भगवान वामन देव ने बलि के पास आए और बलि ने जबरदस्ती हड़प लिया था स्वर्ग को, हड़प कर बैठा था, जबरदस्ती कब्जा करके बैठा था। तो शुक्राचार्य ने बोले, देखो बलि, आपने जबरदखल किया लेकिन आपका नाम में रिकॉर्ड अभी नहीं हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, पटापावती नहीं हुआ है, पक्का रिकॉर्ड आपका नाम में कर लो, फिर तो कोई गड़बड़ नहीं होगा ना, कैसे करूं मेरे नाम में रिकॉर्ड कैसे हूं ना। रिकॉर्ड करने के लिए इंद्र पद के लिए शतक्रतु होना चाहिए, 100 यज्ञ कर लो, 100 यज्ञ करने से तेरा नाम से पक्का रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। हाँ फिर कराओ ना, मैं फटाफट करवाता हूँ, कोई डिस्टर्बेंस से फटाफट। ओ शुक्राचार्य ने आपने सगे संग ब्राह्मण से बुला करके फटाफट फटाफट सफल यज्ञ, क्योंकि त्रिलोकाधिपति बलि थे, कोई गड़बड़ था नहीं, सफल काम होकर यज्ञ करते गए करते गए। अभी 99 यज्ञ हो चुका है, 100th का बारी पड़ा है। भगवान ने वामन बनकर के लेट नहीं किए, पैदा होते ही अपने साइज को छोटा किए, जेन्यू संस्कार किए, फटाफट बढ़े और मम्मी पापा को देखे भी नहीं, बोले नहीं, अब इमीडिएट एक्शन, सीधा वहीं से भागे। जन्मस्थल बड़ू घर उपनयन संस्कार ही हो तो तुरंत वही मेखला वस्त्र जेन्यू, एक जो स्टूडेंट लाइफ, ब्रह्मचारी लाइफ में तो स्टूडेंट बन करके सीधा गए अब भृगु क्षेत्र, आजकल कहते हैं भारू जो भी हो, जहाँ नर्मदा नदी समुद्र में, वहाँ पर भृगु कक्ष में जाकर सीधा पहुँचे, जाकर वेद पाठ करे, जैसे कोई इन्वाइटेड थे नहीं, कोई इन्विटेशन लेटर था ना, गेट पास था, कुछ नहीं था, आधार कार्ड भी नहीं था, ऐसे वेद पाठ किए, ऐसे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण अंदर यज्ञ भंग करते होता उद्गाता दुर्जु, वो सबका स्वाहा नहीं कर पाए, ये साउंड कहाँ से आ रहा है। जो संकल्प जितने बैठे थे सब चकित हो गए, ये सिक्योरिटी तक भी देखने लगे, ये कौन है, छोटा सा साइज का ब्राह्मण, बड़े तेजस्वी, अपना वोल्टेज खूब बढ़ाते, उठ करके सारे जागे के ब्राह्मण राजा रानी तक सारे VIP EIP सब गए, जाकर उनको रिसीव करके लाए, रिसीव करके लाए। महाराज बलि स्वयं सपत्नी को उनको पदधूत किए। आप सबसे पहले काम हुआ भगवान ने छलन का, आपने पैर धो करके पानी उनको पिलवा दिए, और बोले खत्म, बुद्धि सारे खत्म, शुद्ध हो गया, और क्या, भगवत पद जल जिसका अंदर गया वो रहेगा कुछ कलमस, बिल्कुल क्लीन कर दिए। गुरु जी तो पिए नहीं थे जल, बलि महाराज अपने सपत्नी के पिए थे, इसलिए दोनों का पति पत्नी का चित्त कंप्लीट रूप से शुद्ध हो चुका था। सबसे पहले भगवान ने ये करा दी, किसी को नहीं पता था। पदोधो तो जल को हमसे डबल कराएंगे, पहले एक बार कराए, जब फिर नापेंगे तो फिर धोएंगे और एक बार, तो करा करके सब क्लीन कर दिए। उसके बाद में फिर कंडीशन किए, जब ज्यादा कंडीशन रखे मेरे नाप, शुक्राचार्य सुने पहले बैठे थे, वो चश्मा निकाल कर पहने, बोले देखिए बोले इतना कंडीशन कौन करता है, इतने लोग आते हैं दान लेने के लिए, जो इच्छा दान देता है मेरे चेला, ओ ये छोटा सा बालक मैं बहुत संतुष्टि, थोड़ा सा कुछ लूंगा, लेकिन आप एग्रीमेंट साइन करो तभी बोलूंगा, नहीं तो नहीं। इतना ढीठ ब्राह्मण है छोटा सा कौन है, जैसे नंबर वाला चश्मा पहनकर देखे, बोले बलि विरोचन पुत्र रुक रुक जा, खबरदार, क्या ये डुप्लीकेट है, ये ब्राह्मण बालक नहीं है, ये रूप बनाकर आया डुप्लीकेट हो कौन, अरे सब भगवान विष्णु, ये सब ये तो साक्षात भगवान विष्णु है, देवताओं के काम करने के लिए आया तुझे छलने के लिए, खबरदार कुछ मत दो ना कर दो, अरे एग्रीमेंट साइन कर ले, अरे छोड़ो ये ऐसे कह दे, लेकिन बात थोड़ी कम, बोल दो ना कर दो कैसे भी करो। वेद की ऋचाओं को उदाहरण दे करके खूब समझाया गुरु जी ने कि मना कर दो, देखेंगे अपने हिसाब से कुछ देना, उनका हिसाब से मत दो ना, मैंने उनके हिसाब से एग्रीमेंट कर लिया, छोटा सा ब्राह्मण बालक इतने गुलशन देखता है उसको दुखी करूं, अरे भूल जाओ ये डुप्लीकेट है, आप नहीं जानते हैं ये इसे रूप मानकर आया ना, अगर आप गुरु जी आप बोलते हैं विष्णु है, विष्णु तो सर्वसमर्थ ना है, वो कुछ भी कर सकता, हम कुछ कर सकता है, अगर वो चाहे मुझे दो थप्पड़ मार के समझे ना कर सकता है, उनको कौन रोके भाई ना, फिर ऐसे भिखारी ना ही तो मैं भी समझ रहा हूं, और जब भिखारी बनकर आया तो भी उनको आप मत दो, नहीं तो सब ले लेगा, मेरे लिए एनवेलप देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, दक्षिणा के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो खबरदार मत दो। लेकिन बलि महाराज क्योंकि चरणार्द को पी चुके थे, अब चित्त शुद्ध हो चुका था, बोले गुरुजी मैं प्रहलाद के पोता हूं, इतने मेरे त्रिलोक में कीर्ति है, मैं कैसे कर सकता हूं, भले कुछ भी हो जाए मैं तो दूंगा। गुरुजी डांटे, मेरे आदेश की अवमानना करता हूं ना, गुरुजी करता हूं मैं तो दूंगा, गुस्से होकर के अभिशाप दे दिए, बोले नरक में जाओगे, सारे राज्य लक्ष्मी छिन जाएगा, नरकवास होगा, ये होगा, अभिशाप दे, अभिशाप को गुरुजी के क्रोध अभिशाप को स्वीकार कर लिए बलि महाराज ने, और जब देने के लिए आगे बढ़े, हाँ जी सामने क्यों खड़े हैं, साइड हो जा, पीछे कोई बैठे हैं, सामने खड़ा हो गया आकर, तो बलि महाराज ने देने के लिए तैयार हो गए। शुक्राचार्य का फिर भी उनके शिष्य के प्रति प्रेम नहीं जा रहा था, गाली अभिशाप देने के बाद में, त्यागने के बाद भी शुक्राचार्य जब शंख में लेकर अर्घ्य जल दे रहे थे, फिर भी मन नहीं माना, मक्खी बन करके वहां बैठ, बोले पानी नहीं गिरा गया तो साइन नहीं होगा, वो डाल रहे थे, पानी नहीं गिर रहा था क्योंकि उस छेद को रोक दिए थे भगवान, बोलो कोई बात नहीं, एक कुशग्रास लेकर के मार दिया, उनके एक आंख फूट गया इसलिए शुक्राचार्य की एक आंख नहीं है, एक आंख भगवान ने फोड़ दी, वो भागा दौड़ करके, बोला आंख फोड़ दिया मेरा, बोले तू क्यों रोक रहा था। अब बलि महाराज के गुरु जी ने तभी भी मेरे पीछा पड़े थे ना दूं उसको, लेकिन दे ही डाले। अब जब साइन हो गया अरुण देने के लिए कबूल कर लिए भगवान ने, जब नापने का बार, यहां ले लो, कहां लेना है, छोटे तो है, पग तीन पग भूमि लेना ले लो, कहीं पे यहीं पे लेना है, कैपिटल सिटी में कोई गांव में या कहीं ले लो। तो भगवान ने नापने के लिए जब आप डग बढ़ाए, एक पैर तो रहा दूसरे पैर तो बढ़ाए, देखते गए सारे बैठे थे जितने वीआईपी लोग, ऋषि मुनि ब्राह्मण सब, देखते गए, आंख भी नहीं जा रहा है, पैर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहे, पूरे ब्रह्मांड के ओर छोर, पाताल से लेकर के मर्त्य लोक छोर पर्यंत सारे बढ़ा लिए पैर, यहां तक इतने लंबा पैर बढ़, क्या स्केल था उनका, अद्भुत विक्रमण, अब नाप लिए और सारे शरीर को इतने बढ़ाए, कोई देवता गंधर्व किन्नर आकाश वायु बादल सब छा गया, कुछ नहीं बाकी रखा, जितने कोई देख सकता है सुन सकता है, जहां तक चंद्र सूर्य का किरण जाता है, जहां तक बादल बरसता है, जहां तक वायु बहता है, वहां तक अधीन कर लिए। बोले और स्वर्गलोक ऊपर का है, बढ़ाए दूसरा पर, ऊपर बढ़ाए कि ब्रह्मांड का छात फट गया, ब्रह्मलोक तो चला गया, स्वर्गलोक क्या ब्रह्मलोक तो पैर चला गया, इतने तेजी से पैर बढ़ा। बोले तू कितना दिन, मैं ऊपर तो पूरा ब्रह्मांड नाप लूंगा, तीन लोग क्या बोलता है तूने। ब्रह्मा जी ने देखे बोले ये तो पापा के पैर है, तुरंत तो बुला कर सको अभिषेक किए ब्रह्मा के मंडल में जो भी है ब्रह्मांड वो सब किए। तो कर कार करके बोले अब तो कुछ बाकी नहीं था, बलि महाराज भी देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं कि कुछ भी बाकी नहीं रखा, सब नाप ले दो पैर में, दो पैर में नाप करके भगवान ने फिर अपने फर में आ गए, अपने अख्तियार लेकर के बोले अब बड़े इतने में अपना पार्टी लोग भी बुला लिए, वो जानते हैं गड़बड़ होने में झगड़ा होगा, आनंद सुनंद प्रबल जय विजय सब उनके पार्टी लोग को बुला दिए, द्वादश अपने पार्षदों को और सब अपने आर्म्ड फोर्स अपने शस्त्र शस्त्र के साथ आए थे। आ करके गरुड़ जी को बोले बांधो उसको, बहुत बड़ा दानी देख रहा था, बड़बड़ कर रहा था, मैं दे दूंगा ये दे दूंगा वो कर दूंगा, क्या है तेरा, दो डब दिया तीसरे पग के लिए कहां जाएगा तेरा पास, बड़े बड़े बात कर रहा था, अरेस्ट करो उसको। गरुड़ जी ने सबके सामने वरुण पास में बांध डाले बलि को जाकर, अरेस्ट की। बताओ कोई अगर सोचो आपके घर में कोई भिखारी आएगा, छोटा सा साइज वाला भिखारी, बिल्कुल नॉर्मल बेगर कोई आए, आकर बड़े गिड़गिड़ाए मुझे केवल इतना चाहिए, मैं घर में थोड़ा बैठ करके थोड़ा भोजन करूंगा, दो रोटी हो जाएगा मेरे को और कुछ नहीं, दो रोटी करके आपके गोडाउन खाली कर दे जबरदस्ती और आपको अरेस्ट करे आपके घर में घुस करके, कितना बात है बता। भिखारी बन करके आया घर में घुस करके, राजमहल में मंत्री परिषद सेनापति सब बैठे हैं उनके सामने, उनको अरेस्ट करा, अरेस्ट करके डांटे, डांट रहे आक्षेपित कर रहे हैं और इसी सबके सामने, यहां तक कि उनके जो सेनापति और बड़े बड़े सेनाध्यक्ष सब थे नमुची विप्रचित जो सेनाध्यक्ष सब बड़े बड़े असुर सेना, वो उठ पड़े बोले अरे हमारे स्वामी तो बड़े सिंपल है, उनको ठग करके क्या कर दा ये तो ब्राह्मण बड़े खतरनाक है, मारो इसको पीटो, अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ाई करने के लिए टूट पड़े। भगवान तो पहले अपने पार्टी को बुलाकर रखे थे, बोले खबर लो उनको, जय विजय जो जो नंद सुनंद आदि होते हैं भगवत पार्षद, एक एक दस दस हजार के हाथी के बल रखने वाले होते हैं, अरे बेचारे असुर उनके सामने क्या, सब हाथ पर काट कुटी सब ऐसे मारपीट किए, बलि महाराज बोला भागो यहां से चले जाओ, सब महाराज मारे जाओगे भागो यहां से, सब डर के मारे सातल भाग के छोड़ छाड़ करके, अब सबको मारपीट भगा दिए, कोई नहीं रखे और जो भी थे उनके सामने ऐसे डांट पीट करके, यहां तक कि बहुत डांट कर बोल रहे थे तू ऐसे बड़ी बड़ी बात कर रहा था, तू झूठ बोल रहा है, झूठा कहीं के तेरे गुरु जी ने तुझे त्याग दिया, अब नरक जाओगे, ये सब करना पड़ेगा, ऐसे करके डांट करके बोल रहे थे तू, तीसरा पग कहां है, तो ऐसे डांट पीट कर जब बोले भगवान ने, बलि महाराज ने कहले प्रभु गुरु जी ने मुझे वार्निंग तो पहले दिए थे, मैं फिर भी समझ गया था, लेकिन फिर भी मैंने राजी हुआ देने के लिए, और तो सरासर दुनिया को पता है अपने चिटिंग करके मेरे से सब ले लिया, ले जाने के बाद ही मुझे अरेस्ट करके सबके सामने डांट रहे हैं पीट रहे हैं और इसे अपमानित भी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु मैं आपके डांटना पीटना अपमान और निर्धन हो जाना राज्य से छूट जाना एक फटे कोड़ भी नहीं रहना शापित होकर नरक वास करना आई डोंट केयर, मैं किसी के लिए कोई खातिर नहीं कर रहा, मैं सब सहन करने के लिए तैयार हूं, केवल एक को मुझे डर लगता है क्या अपकीर्ति, मेरा कीर्ति नाश ना हो जाए इसी को बचाने के लिए मैं प्रयास करूंगा, इसलिए मुझे इसे डांटिए मत, रख क्या है क्या देना ना शीर्ष मेरा सर में रखिए तुम्हारा पैर, तीसरे पैर आप जो रखना है तीसरे पग मेरा सर में धारण दी, नतमस्तक हो गए झुक करके अपने शरीर बढ़ा दिए, बोले आपके चरण इस सर में धारण कीजिए। अब तब कहते थे कि मैं एक एक पैर में संसार नाप लिया, तेरे चरण में एक क्या पांच इंच का ठुक जाता है वो मेरे चरण में आएगा, बोले हाँ ये वस्तु दृष्टि से देखने से तो छोटा है नहीं आएगा, लेकिन अगर न्याय दृष्टि से देखे मैं मालिक हूं, ये संसार सागर त्रिलोक तीन लोक ये मेरा था, मेरा धन था, मेरा धन से धनी तो बड़ा है ना, तो धनी का सर है तो इन्हीं हिसाब से न्याय के सबसे बड़ा है, तो इसलिए ये खप जाएगा, इसमें रखो तीसरा पैर, इसमें रखो, मैं जो होता है मेरा से बड़ा होता है, तो इसलिए मैं मेरा सर में रखो तीसरा पैर, आपने सर बढ़ा दिए। तो इसी अवस्था में प्रह्लाद महाराज आए, बने हुए थे प्रहलाद महाराज आए, जो प्रहलाद महाराज के प्रति पूर्ण समर्पित बलि महाराज, इतने उनको भक्त थे, आज प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, बंधे हुए हैं बिचारे, प्रणाम तक नहीं कर पाए, रो पड़े, रो रो करके दादाजी को रो देखे, बोले दादाजी तो प्रणाम ही नहीं कर पाऊंगा, ये दशा मेरा है, देखिए तुम्हारे ठाकुर जी की दशा मेरे करके रखे। प्रहलाद जी आकर देखे, बोले प्रभु, प्रहलाद जी आकर तुरंत दंडवत प्रणाम किए, दंडवत बोले प्रभु ऐसा कृपा तो मेरे ऊपर आप नहीं किए, मैंने सारा जीवन जन्म से पहले से ही माता गर्भ से निकलने से, माँ के गर्भ में जब था तभी से आपके क्लास सुन रहा था, भाव क्लास कर रहा था, है ना, नहीं तभी से भक्ति शुरू किया था, श्रवण भक्ति आदि, और अभी तक पूर्ण स्मरण करके आपको भक्ति कर रहा हूं, स्मरणांग निभा रहा हूं, लेकिन ये तो बदमाश था, असुरों के राजा था, बदमाश था, कई बार देवताओं को छेड़छाड़ किया, आपके साथ एक बार मर्डर भी हुआ था, इतने बदमाश, लेकिन जो कृपा उनको कर रहे मुझे नहीं किया आपने। बोले क्यों ना, आपके ये जो तिलोकाधिपति त्रिलोक के धन संपत्ति देना, ये तो आपके कृपा ही था, आपके देना जितने सुंदर है, आपके लेना उससे ज्यादा और सुंदर है, आपके लेन देन जब ले रहे हैं तो और सुंदर। बोले कैसे, बोले कभी कोई अभिभावक माता पिता अपने बच्चे को जानते हैं गड़बड़ कर रहा है, फिर भी संबंध के कारण डांटते नहीं, नहीं करना चाहिए, मत करो, लेकिन इतना डांटते नहीं है, लेकिन जो सचमुच हितैषी है छीन लेता उनके हाथ से, है तेरे गला में घाव है आइसक्रीम खाता है, छीन लेंगे उनसे, वो रो रहा होगा नहीं कि छीन लेंगे ना, जो उनके वास्तविक हितैषी होगा छीन लेगा। बोले ऐसे तू छीनता है, देख रहा है कि ये संपत्ति, ये कुल, ये सब जो अभिमान उनके अहित करेगा या परम हितैषी, आप तुरंत छीन लेते हैं जबरदस्ती उनसे। बोले इतने सौहार्द, इतने हित चिंता, इतने उपकारी कौन हो सकता है, मेरे साथ आपने ऐसा नहीं किया जिसको उनके साथ कर रहे हैं। आप भगवान समझ गए, तो ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आकर कोई बोलना चाह रहे थे, बिंधावली आ गए, बलि पत्नी आकर तुरंत भगवान को बोली, बोले प्रभु ये देखिए मेरे पति निर्लज कहीं का है, बेशरम है, अपने पति को डांटी आकर, बोले बोल रहा कि मेरे सर ले लो, ये तेरा शरीर तेरा बाप का है, तेरा है क्या, ये संपूर्ण संसार उन्हीं का है, उनके खेलने के लिए, उनके भोग के लिए बना रखे, ये शरीर भी उनका है, तेरा है क्या, तू देने के लिए राजी होता, तू देने वाला हो कौन, तेरा है क्या, ये संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, तू क्या देगा, सर बढ़ा देता, वही तो उनका ही है। बलि महाराज की पत्नी भगवत चरणादक पान करके इतने शुद्ध बुद्धि थी, तो ब्रह्मा जी ने आकर के ये बात सुन करके प्रहलाद जी के बलि पत्नी के बलि महाराज की अवस्था देख कर ठाकुर जी को हाथ जोड़ के बोले प्रभु मैं भी आपके पहले बेटा हूं, मैं आपके स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, मैं जानता हूं, क्या जानते हो ना, आपको गंडू स जल मात्रे न तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलके नवा, बोले एक तुलसी के पत्ता इतने पानी 10 ग्राम इतने में कोई नारायण इति समर्पयामी को कर देता है, तो आपने आपको आप दे देते हैं उनको, लो। और वो बेचारा 3 लोग के संपत्ति सब कुछ दे दिया और उसको बांध कर डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, ये तो आपके स्वभाव नहीं, मैं तो कभी देखा नहीं। ब्रह्मा वाले तू इतना ही देखा, ठाकुर जी तू इतना ही देखा, बाकी नहीं देखा, मेरे असली कृपा तू नहीं देखा अभी, बोले इनसाइड कृपा तू नहीं देखा, एक्सटर्नल कृपा तूने देखा है केवल, इंटरनल कृपा ना जस्या हम अनुकृणामी हरिष्ये तद धनम सने, ये मेरे विशेष कृपा, बोले देखा नहीं, ये बड़ी महाराज मेरे शरणागत भक्तों के ऐसे लक्षण होता है, जिनको मैंने छल किया उनको पता मैंने चीटिंग किया उनके साथ, आपके साथ चीटिंग करेगा आप केस कर डालेंगे उनके नाम से, नालिश कर डालेंगे, बोले मैं उनके साथ चीटिंग किया और उनको घर में घुस करके चीटिंग करके उनको अरेस्ट किया, मेरे लोगों से शत्रुओं से उनको डांटा पीटा अपमानित किया लांछित किया, ऐसी दुरावस्था किया, सबसे हीन करा दिया, लेकिन फिर भी वो रोते विलखते पीछे नहीं हटता है, वो आपने प्रतिज्ञा के व्रती है, आपने प्रतिज्ञा को मिटने नहीं देता, तब भी सर समर्पण मत करता है, प्रभु मेरे सर के ऊपर मुझे मार डालिए, मेरे शरीर भी आपके लिए चलिए, फिर भी मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना चाहता हूं, कई से सती प्रतिज्ञा है, सब कुछ लेने पर इतने तलितलांत करने पर भी उन्होंने पीछे नहीं हटा, ये मेरे शरणागत के लक्षण है, हे ब्रह्मा मैं खुल करके बताता हूं, मेरे माया को जीत पाना किसी के शक्य में नहीं है, कोई बस में नहीं है, लेकिन इसी ने जीत लिया। ये अत्यंत कष्ट साध्य माया को ये बलि ने जीत लिया है। अब मैंने उसको वो इस प्रकार से समर्पण किया तो उसको मैंने निरय भेजूंगा, रावण ला अभिन्न है, मैं निरय में भेजूंगा, मेरे प्राइवेट क्वार्टर में रखूंगा, मैं ऑर्डर देकर के जो बनाया वहीं रखूंगा उसको, और मैं खुद ही देखभाल करूंगा उसको। ये तो बड़ी महाराज ने आत्मसमर्पण किए, उनको बुला गया। यहाँ भगवान ने केवल बोले कि उन्होंने यहाँ सरेंडर किया, डांट पीट किया तो उन्होंने माना अपने कृति के वजह से, अपने मान रखने के सम्मान रखने के लिए उन्हें समर्पण कर दिया। लेकिन एक और जगह में भगवान और भक्तों के समर्पण की बात हम देखते हैं, जिस पर भगवान ने दावा करके बोलने ठोट करके बोले ये मेरे भक्त, वो मुझे कंप्लीट देह समर्पण किया है, सब कुछ समर्पण किया है और मैं उसको यूज कर रहा हूं करूंगा, ये भगवत वाक्य में ये श्री सनातन पाद के प्रसंग में आता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब कहते हैं, महा सनातन गोस्वामी जब वृंदावन से पुरी जा रहे थे, उनको ऐसे बीमार हुआ पूरा शरीर सड़ गया, इसका भी चर्म रोग होकर के, सोचे कि इससे पुति गंधव पब पी भी पिस पस निकल रहा है, सड़ गया शरीर, इस शरीर में ठाकुर जी के पास क्या जाऊं, बेटर जाकर रथ चक्का के शरीर सुसाइड कर लूं, मर जाऊं इस काम धाम में रहूंगा सर, ये डिसाइड करके गए थे। अब भगवान तो अंतर्जामी है, आकर उन्होंने डांटे बोले नहीं मर सकता, तो सनातन बोलते हैं कि प्रभु ये सड़ा हुआ शरीर को जिलाने से क्या फल मिलेगा तुम्हारे, मोरे जियाई ले तुम्हारा किवा हवे लाभ, ये सड़ा हुआ दुर्गंध शरीर को बचा कर रखने से आपका लाभ क्या है। ये बात जो कह दिए भगवान ने गरज पड़े, व्हाट आर यू टॉकिंग, प्रभु कहे तुम्हारा देह मोर निज धन, प्रभु कहे तुम्हार देह मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, तुम्हारा शरीर इट इज माई पर्सनल प्रॉपर्टी, तुम्हारा देह मोर निज धन, भगवान ने दावा करके कहते हैं मोर निज धन, तुम ही मोरे करिया छ आत्मसमर्पण, आप मुझे दे चुका है, अभी ओनरशिप मेरा है, मेरा राइट है। अच्छा एक बात मैं समझ में आता हूं, आप इतने हम लोग से बैठे हैं, अगर अपना पर्सनल स्मार्टफोन हो, अपना खुद जो खरीद किया है अपना फोन, और कोई दूसरे का फोन कोई आ गया कहीं गड़बड़ यूज होना तो वो उसी को यूज करेंगे, अपना फोन को साइड कर रखेंगे, कोई खर्च ना आ जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, है ना, अपना कोई भी चीज पर्सनल। और जब प्रभु दावा करके बोलते हैं तुम्हारा शरीर मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो ऐसा ही करते हैं, सड़ा के सड़ा सड़ा करके पीव पस गंधित दुर्गंध कर रहे हैं, ये आपके व्यक्तिगत धन का ऐसे ही उपयोग है, ऐसे रखवा लें। लेकिन ठाकुर जी के स्वभाव क्या पता, बोलते हैं परेरा द्रव्य र तुम ही कहना चाहो विनाशित, ये दूसरे का समन है, तुम्हारा शरीर मेरा है, ये परेर द्रव्य को तुम कैसे विनाश करने चाहता हो, धर्मा धर्म विचार की बा नापार करीते, धर्मा धर्म का विचार क्या नहीं है आपका, तुम्हारा शरीर आमार प्रधान साधन, ये कहते हैं कितने भगवान के गर्व है, तुम्हारा शरीर आमार प्रधान साधन, ए शरीर साधि आमी बहु प्रयोजन, आपके शरीर मेरा प्रधान साधन है, इस शरीर के द्वारा मैं बहुत कुछ काम करने वाला हूं, साधि बहु प्रयोजन, भक्ति भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्व निर्धार वैष्णवर कृत्यार वैष्णव आचार कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सवा प्रवर्तन सेवा प्रवर्तन लुप्त तीर्थ उद्धार वैराग्य शिक्षण निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन तहां ये धर्म न चाही करिते प्रचारण। ये सारे लिस्ट बता दिए, इस लिस्ट सारे जो काम, ये सारे कंप्लीट प्रोजेक्ट आपके शरीर के द्वारा मुझे करना है, और तू शरीर को मिटाना चाहते, अरे जब इस शरीर कराना चाहते, शरीर को मेंटेन करे ठीक ठाक कर रखना ना, खिला पिलाकर प्रोटीन फ्रोटीन दे करके बढ़िया सा तंदुरुस्त कर रखो तो काम लेना है, और पूरे गला दिया उसको दुर्गंध पब पीस निकल रहा है, बस पीप निकल रहा है, ये एक टेक क्या है, इतना काम कराना है इस शरीर से। अब ऐसा नहीं, अब बोले बोले छोड़ो ये पार्ट, अब काल मेरा एक हाउस प्रोग्राम है, वो तोटा गोपनाथ है, मैं चलना है, आना है दोपहर में लंच है, आना मैं हाउस प्रोग्राम। सनातन बोले अवश्य आऊंगा, आप बुला रहे हैं आपके प्रोग्राम में तो आऊंगा लंच में, मैं तो इसी वीक में आओ। तो महाप्रभु देखिए कैसे प्रक्रिया, बुलाए और ठीक दोपहर में महाप्रभु चले गए, तो डाकुंधा लंच के लिए। अब सनातन गोस्वामी जब बालीसाई होकर जाते मंदिर के पथ में, बढ़िया अच्छा रास्ता था, 10 मिनट पहुंच जाते, वहां न जा करके घूम करके समुद्र होकर के 4-4.5 किलोमीटर रास्ता, कोई पेड़ नहीं समुद्र के तीर, बिल्कुल बैसाख जेठ मास का जो दोपहर का समय, इतने तप्त बालू का पैर में फुसका, चप्पल थोड़ी ना था उनका, बिल्कुल फोड़ा उठ गया शरीर में पैर में, फिर भी गए इस चढ़ दूर में जाके पहुंचे 2:30 बजे। महाप्रभु 12 बजे लंच खाकर बैठे, वेट किए, गोविंद बोले नहीं आ, नहीं आ रहा है, ठीक है मैं जाकर रेस्ट कर रहा हूँ, आने से उसे रख लेना, अपना उचिष्ट रख दे, उनको खिला देना, लेकिन सो करके ध्यान, अंतर्जामी प्रभु है सब जानते। महाप्रभु 2:30 बजे पहुंचे, देखे कि प्रभु रेस्ट करे, डिस्टर्ब के लिए गोविंद है ना, प्रसाद आपके छुड़ा हुआ है, आप पा लीजिए, इतने लेट में आए नहाते उड़े प्रसाद पा रहे थे, तो बुलाए गोविंद सनातन ना, हाँ आप पा रहे हैं प्रसाद ना, तो भेजना मेरे पास जाके सनातन प्रणाम। बोले क्यों इतना लेट हुआ ना, थोड़ा मैं निकला था टाइम पे, थोड़ा आने में रास्ता लेट, कौन सा रास्ते में आया, सब जान बुझ कर पूछे कौन सा रास्ता ना, समुद्र क्यों, ये रास्ता में क्यों नहीं आया, मंदिर होकर किसी तरह रास्ता था वो जल्दी पहुंच जाता। सनातन बोले कि क्या करूं, एक तो मैं बीमारी शरीर हूं और दूसरे यहाँ भगवान तो नहीं, भगवान के सेवक का आतजात हो रहा है, भगवान के जो सेवाकारी भक्तगण ब्राह्मणगण पंडा पार्षद वो लोग सब जा रहे हैं, तो मैं तो स्पर्श करूंगा ही नहीं, अगर मेरा छाया उनको स्पर्श कर जाए तो महा अपराध हो जाएगा, तो इसी वजह से मैं नहीं गया उस रास्ता में, इस समुद्र किनारा होकर के आया गर्मी में। अरे गर्मी में पैर चप्पल नहीं धरा दो ना, हाँ प्राण तो हुआ लेकिन कोई कष्ट महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आपके साथ लंच करूंगा ये सुख था, इसलिए दुख मुझे कोई बाधित नहीं किया, मैं प्रसाद प्रसाद पा लिया ना। अब भगवान पैर को नष्ट की पूरा फोड़ा उठा हुआ, इतने बड़े बड़े सब फपले सब फटका हो चुका है पैर में, फुसका हो चुका, देख करके महाप्रभु बेड से उठ करके आलिंगन कर डाले, और वही शरीर को आलिंगन किए जिस शरीर में अभी भी पीप पस निकल रहा था दुर्गंध, पूरे भगवान के शरीर में स्टाम्प सब जर्जर हो गया, भगवान के दिव्य कलेवर में वो सारे पव पीस लग गया। सनातन अभी भी इतने दुखी थे, बोले क्या करूं, मानते नहीं, जबरदस्ती बोले प्रभु क्यों ऐसा कर रहे हैं अपने, बोले क्यों, मुझे तो बड़ा सेंट आ रहा है, चतुसन बोले चंदन अगुरु केसर और कस्तूरी से मिला करके जो सेंट, उससे भी ज्यादा सेंट आ रहा है मुझे, आपको दुर्गंध लग रहा है, कोई मक्खी भणभण हो रहा है, कोई पास नहीं आ रहा, आपको अच्छा लग रहा है। तो सनातन बोलते हैं कि प्रभु आपके स्वभाव को बुझना समझना समझ नहीं आ रहा है, आप वासुदेव कुष्ठ के गणित कुष्ठ था, कीड़ा चल रहे थे उनके कुष्ठ माधि में, उसको आलिंगन करके गोल्डन बड़ी बना दिए, और मुझे सकड़ो आलिंगन कर चुके हैं, यही सड़ा कर रखे, पता नहीं क्या इच्छा तुम्हारे क्या, जगदानंद बोल रहा है चला जाऊंगा, मैं सोचता हूँ कि रद्द कर मैं वापस चला जाऊंगा आपको मैं, और इतना आपके दुख में नहीं हो सकता है, आपके शरीर की इस प्रकार मुझे नहीं देखा जाता। भगवान तुरंत डांट गए, बोले ये सब आते तू मुझे छोड़ के जाता है, नहीं नहीं नहीं, भगवान ने सिखा देते, बोले सनातन मैं तुम्हारे शरीर को इसे पिघला कर गला करके फिर मैं तुझे आलिंगन कर रहा हूं, और फिर भी तुझे केवल शरीर नहीं गला है, पैर बाकी था, पैर के नीचे पैर में भी फुसका करके इतने आप तप्त बालुका में चल के ईसा किया, मैं इसमें बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। बोलते हैं तुम कहता है कि तुम ये रास्ता में आने से भगवान के सेवक का छाया स्पर्श हो जाएगा, इसलिए आपके अपवित्र हो जाएंगे वो लोग। बोले मैं जानता हूं यद्यपि तुम हय जगत पावन तुमा स्पर्श पवित्र हय देव मुनि गण। बोले मैं जानता हूं तुझे, तेरे स्पर्श पा करके देवेंद्र मुनिंद्र गण भी पवित्र हो जाएंगे। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा लक्षण मर्यादा पालन है साधुर भूषण। बोले फिर भी भक्त का ही नेचर होता है मर्यादा पालन करना, और मर्यादा पालन साधु के अलंकार भूषण होता है, साधु का भूषण। मर्यादा पालन है साधुर भूषण मर्यादा लंघन लोके करे उपहास। मर्यादा लंघन होने से लोग उपहास करेंगे, यह लोक परलोक दुई जाए नास। मर्यादा रखिले तुष्ट हय मोर मन तुम्हें इच्छे ना करिले करे को न जाना। बोले आप मर्यादा पालन करके दिखाया, क्या मर्यादा पालन किया ना, पैर में चप्पल बिना आगे चल करके फुसका उठाए, ये मर्यादा है। उच्च कोटि के भक्त जो है वो इसी प्रकार काम करते, यही है मर्यादा रक्षण। प्रभु प्रसन्न होकर के आलिंगन किए, बोले तुम अगर ऐसा ना करते वो कौन करता, कौन सिखाया जगत को, इसीलिए तेरे द्वारा मैं सिखा रहा हूं जगत को, तेरे शरीर को इसी प्रकार कर करके ऊपर से नीचे जला करके पिघला करके सड़ा करके दुनिया को दिखा रहा हूं, देखो मेरे भक्त के साथ मैं कैसे खिलवाड़ कर सकता हूं, फिर भी आलिंगन करता हूं। तुम ऐसी मानता है कि प्रतिगंध में तेरे शरीर है? नहीं नहीं नहीं, लास्ट में भगवान फाइनल आलिंगन किए, तुरंत दिव्य शरीर बना दिए। एक मिनट कोई अंटमेंट फंटमेंट लग रहा नहीं था, बिना अंटमेंट में इंजेक्शन में देखते देखते आधा सेकंड में शरीर की बिल्कुल देव शरीर बना दिए। तो भगवान कभी भी कर सकते थे, उनके पर्सनल प्रॉपर्टी। वही बोलते हैं भगवान जो समर्पित भक्त के साथ में ऐसे व्यवहार करते हैं, ही हैज ऑल राइट रिजर्व। वो चाहे उनको सड़ाए, गलाए, उसके फुसका उठाए, जला दे, कुछ भी करे, ही कैन डू एनीथिंग। मत प्राणनाथस्तु सैव नापरः, वो कुछ भी करने के लिए उनका अधिकार है। हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, केवल सह सकते हैं और उसके ऊपर और सहन करेंगे और मर्यादा रक्षण करने के लिए। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के फिर आलिंगन होते। बोले तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? हम वो होते तो बोले प्रभु जी बुला दिए, चप्पल तुम्हारे पास नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा। फोन करते प्रभु जी रिक्शा टांगा कुछ कन्वेंस भेजो ना, जाऊँगा। बोल दिया आपका लंच में जाने के लिए, लेकिन जाऊंगा कैसे? कुछ टम टम अरेंजमेंट करो, गाड़ी भेजो, नहीं तो नहीं जाऊंगा, तेरी फिर भेज देना हमारे पास। ऐसे हम लोग, लेकिन देखिए भक्त कैसे होता है। ऐसे भक्त जिनको प्रभु ने दावा करके गर्व करके बोलते हैं कि तुम मुझे समर्पित किया है, तुम्हारा देह इट्स माई पर्सनल प्रॉपर्टी, ये बात को सुनकर हरिदास तो नाचने लगे। बोले अभी तक ना कोई शास्त्र में, वेद में, इतिहास में, पुराण में कहीं नहीं सुना प्रभु के ऐसे दावा भक्त के प्रति। हाय हाय सनातन, तुम्हारा भाग्य की तो सीमा ही नहीं है, इतनी बड़ी दावा करके प्रभु आपके साथ कहते हैं। तो ये है भक्त और भगवान के, जो समर्पित भक्त, जो शरणागत भक्तों के, ऐसे ही उनके मर्यादा, ऐसे उनके व्यवहार, ऐसे उनके लक्षण, और उसके द्वारा भगवान को ऐसे वशीभूत करते हैं कि भगवान तो अपना भी लिमिट तोड़ करके उनके साथ व्यवहार करते हैं। पूरी में ऐसा नहीं किए, वृंदावन भेजे, वृंदावन में ब्रजवासी घर से भागकर उनके साथ आ गए रहने के लिए, भागकर उनके साथ गए, मक्खन रोटी छोड़कर आए, वहां बिना नमक के बोले डाइजेशन नहीं हो रहा, थोड़ा नमक पानी दो, नमक के बहाने मंदिर बना दिए राधा मदन मदन के। और सनातन गोस्वामी बोले मंदिर फंदिर टेंशन में चला जा रहा हूँ, पावन सरोवर जाके भजन के, वो मंदिर छोड़ भाग के जाके दूध पिलाए उनको, बोले ये मेरे पीछे पड़ गया, यहाँ छोड़कर भाग गए गोवर्धन, गोवर्धन जाके बोले बुढ़ा हो गया परिक्रमा करूंगा, और उनके पीछा छोड़े नहीं परिक्रमा, उनके साथ जो गिर जाते थे परिक्रमा करते करते 40 मिनट, फिर उठा करके बोले नहीं मत करो, बुढ़ा हो गया मत करो परिक्रमा, ना मुझे और कुछ तो नहीं कर पा रहा हूँ परिक्रमा करो, अगर परिक्रमा तुझे करना ही है, मैं हार गया तो साइन करके आपने पदच्छाप देकर स्टाम्प लगा कर पैर का एक शिला दे दिए। ये प्रमाण आज भी विद्यमान है भक्त और भगवान के व्यवहार, और शिला दिए बोले उसको परिक्रमा कर दो, नहीं करो। तो ये है समर शरणागति के लक्षण, शरणागति के भाव, और शरणागत भक्तों का भगवान के कैसे व्यवहार। हरे कृष्ण।